ओम शांति, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है। कोई भी बात है तो योग बल से काम लो। बार बार बाबा ने कहा योग बल से काम लो, क्योंकि उस समय बाबा से कई छोटे छोटे प्रश्न पूछते थे, पत्रों में भी पूछते थे। खास करके मिलिट्री वाले आते थे बाबा के पास, तो बाबा हमको तो मेस में खाना पड़ता है। हाँ बाबा, उसमें लहसुन प्याज भी डालते हैं, तो अब क्या करें, वही खाना पड़ता, हम पका तो सकते नहीं है। तो बाबा कहते थे जो बाबरची होते ना कुक, उनको उनसे दोस्ती बना लो और उनको कहो कि देखो जब तुम तड़का लगाओ लहसुन प्याज का तो उस समय मेरा, उससे पहले मेरा निकाल दो, फिर भले आप लगाओ सबके लिए, लेकिन मुझे नहीं खाना है। फिर पुलिस वाले बाबा से पूछते थे, बाबा हमको मारना पड़ता है, तो बाबा कहते थे युक्ति से काम लो, योग बल से काम लो। उस समय ये देखो क्या करना है मुझे। हाँ, छोटी छोटी बातें बाबा से नहीं पूछनी होती है। बाबा ने तो मुट्ठी में तो सब बता दिया है, पवित्र भोजन हो और क्या करो क्या नहीं करो। तो पुलिस वाले बाबा से पूछते थे, चोरी करने वाले वो सच बताते नहीं है तो मारना पड़ता है, तो बाबा कहते भले करो, लेकिन अंदर में फिर रहम दिल भी हो, दृष्टि भले थोड़ी कड़ी दिखाओ, लेकिन बाबा कहते ऐसे भी शब्द नहीं बोलो जो बहुत ही कटु हो। तो इसीलिए बाबा कहते युक्ति से काम करो। तो युक्ति कैसे आएगी, जब योग बल होगा, योग युक्त होंगे। तो एक है योग बल, फिर है दूसरा है दुनिया में भोग बल। तो भोग बल में तो सब कुछ आ गया, अब सारे विकार आ गए, शराब ये सब जो भी आदतें हैं वो भी सब उसी में आ गई। तो उनके अंदर भी नशा होता है, जब वो कोई पीते हैं खाते हैं तो नशा चढ़ता उनको। अब तुम्हारा भी नशा है, लेकिन तुम्हारा है सच्चा नशा, ईश्वरीय नशा। उनका तो है देह अभिमान का नशा। और फिर बाबा दूसरा भी कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि पहले जमाने में जब पति शरीर छोड़ता था तो कैसे वो चिता पर वो कूद पड़ती थी, वो भी मर जाती थी अपने पति के साथ। तो बाबा कहते हैं अब वो तो तुम नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन तो अमूल्य है। बाकी हाँ, काम चिता पर सब चढ़े हैं, तुम अभी काम चिता से उतर करके ज्ञान चिता पर बैठे हो। अगर पति तुमको, हम बाबा कई बार कहते हैं पति तुमको तंग करता है, उनको कहो कि देखो जब शादी हुई थी तो क्या कहा गया था, पति तुम्हारा गुरु है, पति तुम्हारा सब कुछ है। तो अगर आप गुरु हो मेरे, तो गुरु तो पतित पावन होता है, तो आप तो पतित पावन हो, तो मुझे पतित नहीं बनाओ। हाँ, युक्ति से कैसे चलना होता है वो बाबा बतलाते। तो आज की मुरली में बाबा ने कई युक्तियां बताई है, तो सुनते बाबा के महावाक्य। आज 23/9/2025 है। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से पूछने, बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करो। बस ये जरूर है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें कोई आसुरी काम नहीं करना है। बाकी जो भी व्यवहार की बातें होती है, बाबा कहते योग बल से काम लो, युक्ति से काम लो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है, क्या है इसकी खूबी, इस योग बल की करामात क्या है। उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। बाबा की याद से सब कर्म इंद्रियां वश हो जाते हैं, इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। पावन बनने की भी यही युक्ति है, योग बल। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है, इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो, ऐसे कोई ऐसे शब्द नहीं बोलो किसी जिससे किसी को दुख हो। जिसको बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको भी मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। भगवान नई दुनिया की स्थापना करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं सत्योगी स्वर्ग की दुनिया की स्थापना, बाबा कहते कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। भक्ति मार्ग में तो कितनी मांगनी की, क्या 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 मांगा। अब भगवान हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, और क्या चाहिए, तो और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते भी हैं, कुछ भी पूछने की भी दरकार नहीं रहती है। न कुछ मांगनी की दरकार है, न कुछ पूछने की दरकार है, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो भी मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, इसलिए मैं ही जानता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही बताता हूँ, कोई नहीं जानते। सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते कि भारत खंड में आकर के क्या करना है मुझे। रोज रोज समझाते रहते हैं, कोई भल एक अक्षर भी न पूछे, बाबा से कुछ भी नहीं पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, बाबा से पूछते हैं, बाबा खान पान की तकलीफ होती है। अब ये तो समझ की बात है ना, बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहां भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वो हम सबका बाप है, सबके लिए शिक्षा ये एक ही देंगे। सारी दुनिया के लिए यही एक ही शिक्षा है कि तुम आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, और भगवान को याद करो, एक ही शिक्षा देंगे। तो बाप शिक्षा देते हैं बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी तो पोजीशन होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा है। पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना है, और प्रारब्ध भी बच्चों को ही पानी है। पुरुषार्थ भी बच्चों को करना है, प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। बाबा को न पुरुषार्थ करना है न प्रारब्ध पानी है। पुरुषार्थ कराने लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर के करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कुछ पता नहीं था। तो बाप ही आकर समझाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो। जरा सोचो तो सही, कहाँ से गिरे है? अर्श पर थे और एकदम अभी फर्श तक पहुंच गए। कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंची चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन है, कितने गिरे हैं, जो हम कौन है यही बुद्धि में नहीं आता। अब महसूस करते हो ना कि सचमुच हम कितना गिरे हैं, अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, कितना ऊंचा उठाएंगे, कित सबको देंगे, तुमको बाबा कहते स्वप्न में भी नहीं था। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो कि ऐसे बाप के ऊपर तो जो इतना कुछ हमें दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े, न्योछावर होना पड़े ऐसे बाप पर। जैसे किसका मिसाल है, जो न्योछावर होते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता, चढ़ जाती है चिता पर, अपनी अग्नि में कूद जाती थी पहले तो बहुत करते थे, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है, आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यहाँ बाबा तो ऐसी तकलीफ नहीं देते हैं ना, कोई चिता पर चढ़ जाओ अपने आप को जला डालो, ये बाबा नहीं देते हैं तकलीफ। भल नाम ज्ञान चिता है, हाँ ये जरूर बाबा कहते ज्ञान चिता पर बैठो, तो वो भी अग्नि है, योग की अग्नि है, तो ज्ञान चिता पर बैठो, परंतु इसमें जलने की तो कोई बात ही नहीं है ना, उस चिता पर तो नहीं जब बैठाते जो जल जाए, पर तो जलने की तो इसमें कोई बात नहीं है ज्ञान चिता पर बैठना। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं, इतना सरल करके समझाते हैं, जैसे मक्खन से बाल, कितना सहज निकल जाता है बाल मक्खन से, बच्चे समझते हैं बरोबर, जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं है, एक व्यक्ति पर पापों का बोझा नहीं है, अजामिल तो शास्त्रों में तो एक ही दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कोई एक अजामिल नहीं है, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है, दुनिया में एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता कि पांच जन्म में क्या क्या किया, इस जन्म में भी कितने पाप करते तो पांच जन्मों में तो कितने पाप किए होंगे। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए, पुण्य आत्माएं कहाँ होती है, बाबा कहते हैं सतयुग में होती है पुण्य आत्माएं। पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में, कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, कई बार कहेंगे भाई इसने हॉस्पिटल बनाई ये कितना पुण्य आत्मा है, तो बाबा कहते तो भी क्या हुआ हॉस्पिटल बनाई, तो सीढ़ी तो उतरने से थोड़ी बच जाएगा, भले हॉस्पिटल बनाया धर्मशाला बनाई क्या क्या सहयोग दिया समाज सेवा में, लेकिन कोई आत्मा कोई पावन तो नहीं बन गई ना, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा, चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। ये बाप तो ऐसा बिलविड है जिस पर कहते हैं, कितना बिलविड है बाबा, तो बच्चे क्या कहते हैं, जिस पर कहते हैं बच्चे जीते जी न्योछावर जाएं, बाबा हम तुम पर जीते जी न्योछावर जाएं, क्योंकि बाबा पतियों का पति भी है, बापों का बाप भी है, सबसे ऊंचा है, तो इसीलिए हम न्योछावर जाएं ऐसे बाप पर, ऐसे पतियों के पति पर। तो बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, पर कितना साधारण है, ब्रह्मा बाबा भी कितना साधारण है, शिव बाबा तो गुप्त थे लेकिन ब्रह्मा बाबा तो प्रत्यक्ष थे, पर कितना साधारण। तो बाबा अपनी साधारणता का वर्णन करते हैं। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी, हाँ यज्ञ में कोई बीमार पड़ती थी तो बाहर के डॉक्टरों को थोड़ी बुलाते थे, कुछ नहीं, तो जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उनों की सेवा करते थे, बाबा खुद उनों की सेवा करते थे। फिर वतन से बाबा संदेश भेजते थे, वतन से दवाई भेजते थे, सब वतन से बाबा भेजते थे शिव बाबा। तो देखो बाबा कहते कितनी सेवा करते थे, और ब्रह्मा बाबा अपने हाथों से सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं, अहंकार कुछ भी नहीं कि मैं कोई इतनी कम ये छोटी सेवा कर रहा हूं। बाप दादा ऊंच से ऊंच है, कहते हैं जैसा कर्म मैं इनसे कराऊंगा, तो देखो शिव बाबा क्या कहते हैं, जैसा कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा दोनों जैसे एक हो जाते हैं। अब ये ब्रह्मा बाबा ने सेवा की या शिव बाबा ने सेवा की, दोनों एक हो जाते हैं, चाहे शिव बाबा ने कराई या ब्रह्मा बाबा ने की, दोनों एक हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है, माया का भी कितना प्रभाव है, बाबा तो ऊंचे लेकिन माया का भी प्रभाव कम नहीं है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते। अब बताओ इतना ऊंचा बाप कहते हैं बच्चे ऐसे मत करो तो भी नहीं मानते। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना है, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना बाप, ऐसे लौकिक भी बाप यही करेंगे ना, बच्चे ने उल्टा काम किया बेटा ऐसा काम मत करो, तो शिव बाबा भी तो कहते ना बेटा बच्चे ऐसा काम मत करो, मना करेंगे ना उल्टे काम के लिए। लेकिन अब वहां तो माया नहीं है, यहाँ तो माया है, बाबा कहेंगे उल्टा काम नहीं करो और बच्चे उल्टा काम करेंगे, ऐसे तो बाबा कहते। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है, भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है, भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है, बाकी बातें सब भूल जाओ परंतु बाप को नहीं भूलना है। तो भूल चुक कोई चलो कुछ भी हो पर बाबा को नहीं भूलना है। पर तो बाबा कहते भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है, कुछ भी करे मारे अथवा कूटे, बाबा चलो आपको कुछ भी करे सजा दे मारे कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है। हाँ भले ही बाबा कहते हैं कि बाबा कुछ भी करे आपको मारे कूटे, हालांकि बाबा कभी मारते किसी को नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है, केवल जब अति है तब कहा जाता है कि मारे कूटे तो भी तुम बाबा कहते तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु ये एक्सट्रीम बहुत अति में कहा जाता है कि मारे कूटे तो भी। गीत भी है ना, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मारो चाहे प्यार करो तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो बाहर में रखा ही क्या है, हाँ कोई आकर्षण है क्या जो बाहर में जाते हैं, बाहर में रखा ही क्या है, बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, है ही क्या सन दुनिया में। बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़ी कभी मिलती है, अभी मिलती है बाप की बादशाही, ऐसे थोड़ी है कि दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं ये पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं, हाँ सो भी बाप राय देते हैं, दैवी गुण तो धारण करने हैं लेकिन कई बार ऐसा कुछ करना पड़ता है, तो अब बाबा कहते राय देते हैं, अपना पुलिस आदि का काम भी करो, पुलिस वाले पूछते हैं बाबा क्या करें मारना पड़ता है चोरों को, तो बाबा कहते पुलिस वाला भी आप काम भले करो नहीं तो डिसमिस कर देंगे, आप मारेंगे नहीं ना तो आपको निकाल देंगे नौकरी से, तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है ना, आंख भी दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से काम लो, जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। भले आंख दिखाओ परंतु वो भी युक्ति से, हाथ नहीं चलाना है। कुछ भी हो जाए, हाँ ये हाथ चलाना किसी पर ये तो बड़ा पाप हो जाता है, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ऊना रहता है ना, फिक्र रहता है बच्चों का बाबा को। तो मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। आकर हमको पतित से पावन बनाओ पर अर्थ नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है ना, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं है। पतित पावन सीताराम, पतित पावन, तो पतित पावन को बुलाते हैं। अगर तो बाबा कहते हैं अर्थ तो कुछ नहीं समझते हैं, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं है, पूजा की भी दरकार नहीं है। अगर पावन ही है फिर तो पूजा की भी दरकार नहीं है, बुलाने की भी दरकार नहीं है। तो बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, तो सहन तो करना ही है। हाँ सहन तो करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। युक्तियां बाबा क्या बताते हैं, बहुत नम्रता से चलो। पति अगर मारता है, पति विकारी बनाने की कोशिश करता है, तो पति को क्या बोलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो, भिकार क्या मांगते हो, आप तो मेरे भगवान हो। हथियाला बांधा तो यही कहा, ये पति तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा सब कुछ है, फिर ये क्या मांगते हो भिकार। हथियाला बांधते समय कहते हैं ना, मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो, क्यों नहीं मुझे पवित्र रहने देती हो, तुम मेरे गुरु भी हो तो मुझे पवित्र रहने दो, तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है, तो तुम तो पतित पावन हो तो मुझे पावन रहने दो, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। पति को कहो पतित पावन हो, भगवान हो तो आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए अपने पति को। हाँ माताएं होशियार है ना, त्रिया चरित्रम गाए गए हैं, कैसे पति को बड़ी युक्ति से समझाती है। तो बाबा कहते ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे पति तो फूलों की वर्षा करो, फूलों की वर्षा करो ना, प्यार से बात करो भले वो क्रोध भी करे। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, कई बार ऐसे होता है पति बहुत मारता है पत्नी को, फिर बाद में उसको पश्चाताप भी होता है कि मैंने क्यों ऐसे मारा। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, तो उस समय विकार के समय तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो ये विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो, ये विकार भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं परंतु आदत पड़ी है तो वो टूटती नहीं है। शराब पीकर आया पति तो कितना मारता है पत्नी को, तो आदत पड़ी हुई है तो टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती है, विकार भी ऐसे ही है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है बाबा के पास, तो बड़ी उस रूप से तो कितनी मेहनत है, कितना कितना सितम सहन भी करते हैं तो भी पवित्र रहना है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते। कर्म इंद्रियों को वश करने लिए योग बल ही चाहिए, योग बल की ही करामात है। तब तो नाम मशहूर है योग बल, ये नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। अब वो तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, हाँ शांति में बैठ जाते हैं। किसको सच्ची शांति का तो मालूम ही नहीं है। सच्ची शांति किसमें है? जब अपने को आत्मा समझकर, वो भी शांत स्वरूप आत्मा समझकर शांति के सागर को याद करेंगे। बाबा कहते हैं वो सच्ची शांति, तो ये तो किसको पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं किसको सच्ची शांति का तो मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है। परमधाम में तो है ही शांत, न शरीर ही नहीं है। फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है भटकती आत्माएं भी। अब जब तक उसको कोई शरीर न मिले तब तक तो शांत है, फिर जाकर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, ऐसे ना इवन सोल्स भटकती रहती है, सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। वो छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कोई भले मनुष्य अच्छे मनुष्य होते हैं, तो किसको कभी दुख नहीं देते हैं। तो वो आत्माएं भी जो भटकती आत्माएं प्रवेश भी करती है, कोई सब नहीं दुख देती है, कोई तो अच्छी आत्माएं भी होती है। तो भले मनुष्य भी दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई तो जैसे साधु महात्मा होते हैं। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हो। क्या लेने लिए भाई, क्या लेने लिए तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हो? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। सबको पता है ना क्या मिलना है हमें भगवान से। तो बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है, ये तो प्रश्न ही नहीं चाहिए उठना चाहिए। हाँ, बाबा से पूछते हैं क्या, बाबा आपसे क्या मिलना है, अरे क्या नहीं मिलना है ये बात को। सब कुछ बाबा से मिलता है। तो बाबा कहते हैं ये तो प्रश्न ही नहीं लेना, ये प्रश्न ही बाबा आपसे क्या मिलता है, ये तो प्रश्न ही लेने लिए। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है, बाबा आपसे क्या मिलना ये तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि बाबा आपसे क्या मिलना है। बाबा से पूछे आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता है, तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। इनसे कम तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सबसे ऊंची प्राप्ति तो विश्व की बादशाही है, इनसे ऊंची प्राप्ति क्या होगी, तो वही भगवान से मिलती है। तो बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हाँ बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान, दाता है ना देने वाला, तो आसामी माना बहुत धनवान, बहुत को देने वाला। तो बड़े से बड़ा आसामी है भगवान। फिर दूसरे नंबर में आसामी कौन है, बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देते हैं, ब्रह्मा बाबा भी देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। तो पहला बड़े से बड़ा आसामी है भगवान, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता नहीं विष्णु का। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं, हम विष्णु के घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते थे, हम विष्णु के घराने के हैं। कभी ऐसा सोचा, हम वैष्णव है ये तो बोलते थे, वैष्णव है, पर हम विष्णु कुल के घराने के हैं, ये थोड़ी कभी कहा। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं, ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही हैं, ये अलंकार किसके हैं, हम ब्राह्मणों के। अभी ये नॉलेज मिली है, सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे, ये सारा ज्ञान केवल संगम पर ही मिलता है, सतयुग में ये ज्ञान कोई नहीं देगा, सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे, ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत ही नहीं है जो इस समय भगवान बताते हैं। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इसका अर्थ भी कोई समझ न सके, बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? विष्णु के अलंकारों के लिए क्या समझ गए हैं? हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं, अभी हम ऐसे खड़े हो जाएं विष्णु के चार अलंकार लेकर, बाबा कहते तुमको तो शोभते नहीं, हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते देवता बन जाएंगे, शंख ध्वनि करते करते देवता बन जाएंगे, ज्ञान की गदा चलाते चलाते देवता बन जाएंगे, कमल फूल समान रहते रहते देवता बन जाएंगे। तो ये चार अलंकार धारण करते करते देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती, लाखों वर्ष तो हो ही नहीं सकती चक्र की आयु। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है, हाँ जो भी समाचार सुनाते हैं मनुष्य सृष्टि का ही सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य, हाँ जनसंख्या लेते हैं ना, तो जनसंख्या में मनुष्यों की जनसंख्या ली जाती है, वे अभी कितनी जनसंख्या है। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कछुए इतने हैं, मछलियां इतनी हैं, नहीं, मनुष्यों की जनसंख्या गिनते हैं, मनुष्यों की ही बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं तो बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है, जो बाबा समझाते हैं उस पर ध्यान देना है, सब बतलाते रहते हैं बाबा। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? भोजन को नहीं शुद्ध कर सकते हो, जो पूछते थे ना मिलिट्री वाले, तो खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा तुम ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो, हाँ अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, योग से तुम सब कुछ कर सकते हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, रिफ्यूज माना मना नहीं करना चाहिए, बाबा विश्व की बादशाही दे रहा है, स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, और हम पुरुषार्थ न करें माना जैसे विश्व की बादशाही को ठोकर लगाई, विश्व की बादशाही पर उसके लिए पुरुषार्थ करना है और वो करो ही नहीं, माना रिफ्यूज करते है ना, मना कर दिया कि हमको विश्व की बादशाही नहीं चाहिए, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है, विश्व की बादशाही रिफ्यूज की माना मना की तो खत्म। कई कहते ना बाबा जो भी मिले सब ठीक है मेरे लिए, माना विश्व की बादशाही आपने मना कर लिया, ये ठीक है जो भी मिले, तो ये विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर क्या होगा? इंग्लिश में ये दो शब्द है, रिफ्यूज माना अक्षर रिफ्यूजी है, लेकिन दूसरा भी इसका अर्थ होता है रेफ्यूज, तो रेफ्यूज का अर्थ है किचड़ा, तो अगर रिफ्यूज किया बाबा की बादशाही जो बाबा दे रहे वो अपने मना कर दिया तो रिफ्यूज में जाकर पड़ेंगे, किचरे के डब्बे में जाकर पड़ेंगे। तो वो रिफ्यूज रिफ्यूज थोड़ा बस, परंतु स्पेलिंग वही है। तो फिर रिफ्यूज में जाकर पड़ेंगे, माना किचरे के डब्बे में जाकर पड़ेंगे। ये सारी दुनिया है किचरा। देखो मैं कहाँ बैठी थी, ट्रेन में बैठे थे तो कोई एक बच्चा था वहां तो साथ में, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मम्मी ये कहाँ फेंकूं। तो मम्मी ने कहा बाहर फेंक दो ना। तो एक विदेशी वहां बैठा था तो उसने कहा ये भारत में तो ये सारा देश ये रिफ्यूज का डब्बा है, कहाँ भी फेंको। विदेशों में ऐसे कभी नहीं होता है कि कहाँ भी फेंके, बिल्कुल नहीं होता है। आज वो कई तो फिर ऐसे कुछ नाक भी पोछेंगे ना, विदेशी आते नाक भी पोछे तो भी अपने वो पॉकेट में रख देते, फिर ऐसे नहीं फेंकते जब तक उनको कोई किचरे का डब्बा ना मिले। पर भारत में तो ये कम है, देखने को मिलता है। तो बाबा कहते हैं फिर तो रेफ्यूज में जाकर पड़ेंगे, माना किचरे के डब्बे में जाके पड़ेंगे। ये सारी दुनिया ही किचरा है तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे ना, किचरा। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है। विश्व में एक ही राज्य था, एक का ही राज्य था, ये और धर्म वाले और देश वाले थोड़ी मानेंगे, अपना घमंड रहता है। तो फिर जरा भी सुनते नहीं है, कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है। कई फिर ऐसे भी कहते हैं कल्पना है सब कुछ, ये जगत मिथ्या में सब कुछ मिथ्या है, कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, ये ईश्वर ही सब एक्टिंग कर रहा है, वो जो चाहे सो बनते हैं, उनका ही ये खेल है। ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। अब बुढ़िया भी कहती है क्या, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बुढ़िया भी कहती है हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय, सभी हाँ इसी नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है, भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु हरेक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। कौन कहेगा नहीं मैं तो लास्ट नंबर आऊं, ऊंच बनने का ही करते हैं पुरुषार्थ। परंतु हरेक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट, सबसे पहला पुरुषार्थ, ये नहीं सोचो ड्रामा में जो होगा, पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा पुरुषार्थ है फर्स्ट तो क्या करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो फादर, बाबा को कोई अहंकार नहीं, निरहंकारी बाबा, ऐसे फॉलो फादर, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करना है। हाँ मना नहीं करना है। दूसरा, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है। जी कैसे जाएंगे जीते जी न्योछावर? ज्ञान चिता पर बैठकर, ज्ञान चिता पर बैठकर जीते जी उस बिलवेड पर न्योछावर जाना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। हाँ, भूल से भी बाबा को भूलना नहीं है। बाबा ने ये भी कहा है, वरदान, खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। बाबा का वरदान आज का, बेफिक्र बादशाह भव। तो कौन हो सकता है बेफिक्र बादशाह? जो खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर है। तो खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, किसी भी बात का फिकर हो नहीं सकता। ऐसे नहीं, हाँ कितनी बातों का फिकर होता है, ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, हाँ प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना, क्या होगा, क्या परिवर्तन ही होगा ना, पूछते कि वो क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। सब कुछ पुराना ही है, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। सारे विश्व की बादशाही मिलती है जो कोई नहीं छीन सकेगा। स्लोगन, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो। क्या करो? इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। बॉल आया है, बैट से मारो, निराश क्यों होते हो? अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कौन सा होगा? लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं, हम पांडवों के कारण वो यादव जो विनाश करने वाले हैं वो रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थितियों को समाप्त करेगी। वो परेशान हो रहे हैं, अपना वो हथियार यूज करना चाहते हैं, परंतु कोई उनको अदृश्य शक्ति रोक रही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। कैसे दो? क्या करो? अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन निवासियों को तो पढ़ ही लिया होगा, बोर्ड पर नीचे जाना है, 10:30 बजे एकत्रित होना है कॉन्फ्रेंस हॉल में। हाँ आ गया। अभी आज सभी समर्पित भाई बहने 10:30 बजे तक शांति वन के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। 9 बजे से ट्रांसपोर्ट से गाड़ियां मिलेगी। सौगात के पश्चात सभी VIP डाइनिंग हॉल में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके आएंगे। हाँ, वो बड़े डाइनिंग हॉल में नहीं, VIP का जो ऊपर का की जो डाइनिंग हॉल्स है वहाँ स्वीकार करेंगे भोजन। ओम शांति।